दुख हरने वाले, भूल भटको के रखवाले, दीन का दुख हरने वाले, भूल भटको के रखवाले, कहाँ पर पग किसे खबर है, ये जीवन की कठिन जगर है, कहाँ पर पग किसे खबर है, नैन हीन है हम पापों में, नैन हीन है हम पापों में, कौन मिलो प्रभु साथ चले, बिन यीशु कारज नाही चले, बिन यीशु कारज नाही चले, और जतन सब कीजिए प्राणी, और जतन सब कीजिए प्राणी, अंत में केवल हाथ मरे, बिन यीशु कारज नाही चले, बिन
भाइयों बहनों और बच्चों, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपके लिए मेरे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं जानता हूँ कि आप दान पुण्य किया करते हैं, आप गरीबों को भोजन देते हैं और उनकी सहायता किया करते हैं, निसंदेह आप परमेश्वर से डरते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप अवसर मिलने पर तीर्थ यात्रा भी जाया करते हैं कि आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। हाँ, आप नियमित रूप से मंदिर में जाया करते हैं। यदि आप अनुमति दें तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। जरा सोच विचार कर बताइए कि वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी और समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, क्या मनुष्य के हाथ से निर्मित मंदिरों में निवास कर सकता है? परमेश्वर तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही का परमेश्वर है। तो ध्यान से विचार कीजिए, स्वर्ग का वो परमेश्वर जिससे हम निरंतर जीवन की श्वास और जीवन के लिए आवश्यक समस्त साधन प्राप्त किया करते हैं, वह जो हमारा निर्माता है, वह जो हम सबको अच्छी तरह जानता है, भला कैसे सोने चांदी या पत्थर का देवी या देवता हो सकता है? वो भला कैसे वो मूर्ति हो सकता है जिसे किसी कलाकार की कल्पना ने तैयार किया है? हमारा परमेश्वर तो व्यक्तिगत एवं जीवित परमेश्वर है। इन्हीं सारे कारणों से परमेश्वर यह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसके पास आए और उसके पास आने के लिए अपने पापों से पश्चाताप करे। शायद आप ये जानते हैं कि हम सब के लिए एक न्याय दिवस ठहरा दिया गया है, जिस दिन परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य का न्याय करेंगे, और वे जो परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं, वे परमेश्वर के दंड के अधिकारी होंगे। आप अवश्य ही इस दंड से बचना चाहेंगे। इसके लिए हम आपको यह बतलाना चाहेंगे کہ آپ اپنے کسی بھی قیاس سے اس دنڈ سے بچ نہیں سکتے. اس دنڈ سے بچنے کا راستہ بس ایک ہی ہے. یہ راستہ کسی منشی یا کسی دھرم کی کھوج نہیں ہے. یہ پتھ سوئم سورگ اور پرتھوی کے پرمیشور دوارا تیار کیا گیا ہے. یہ راستہ اسی پرمیشور کے دوارا تیار کیا گیا ہے جو آپ کا اور میرا سجگ ہے. اس کے لیے پرمیشور کو ایک بڑا بھاری مولی چکانا پڑا. اس مہان ادیش کی پورتی کے لیے سوئم پرمیشور کو مانو روپ دھارن کر پرتھوی پر آنا پڑا. جب پرمیشور منشیہ بن پرتھوی پر آ گئے تو پرمیشور کا نام یشو دیا گیا. یشو پرمیشور کے پتر ہیں. یشو نے منشیہ بن پرتھوی پر منشیوں کے مدھیے نواس کیا. یشو منشیہ تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی پاپ نہیں کیا. انہوں نے پرتھوی پر رہتے ہوئے انیک آشچریہ کرم ایوم چمتکار کیے. انہوں نے انیک روگیوں کو چنگا کیا, اندھوں کو درشتی دی, اشبد ایوم دشت آتماؤں سے گرست ویکتیوں کو مفت کیا اور مرتکوں کو جیوت کر دیا. ان سارے آشچریہ کرموں سے انہوں نے یہ پرمانت کیا کہ وہ سوئم ستیہ واستوک ایوم جیوت پرمیشور ہیں. پربھو مسیح یشو ایک اتم شکشک بھی تھے. انہوں نے اپنے ششیوں ایوم سمکالین سماج کو سورگ کے وشے انیک شکشائیں دی. ان کی مول شکشا یہ تھی کہ منشیہ اپنے پاپوں کے کارن سورگ میں پرویش نہیں کر سکتا. پربھو مسیح یشو نے یہ سپشٹ سمجھایا کہ اس کے لیے یہ آوشک تھا کہ پرمیشور کے نواس استھان سورگ میں پرویش کے لیے سمست منشیوں کے پاپوں کے لیے ایک ویکتی بلیدان ہو. یہ سوئم پرمیشور کا ودھان ہے کہ بنا رکت کے بہائے پاپ کھما سمبھو نہیں. مسیح یشو کا رکت بہنا آوشک تھا جس سے مانو اپنے پاپوں سے شدھ ہو سکے. لیکن مسیح یشو نے سپشٹ کیا کہ وہ مرنے کے پشچات مرتک نہیں رہیں گے بلکہ تیسرے دن پنرجیوت ہو جائیں گے. مسیح یشو کے ساتھ یہی ہوا. وہ اپنے ویرودھیوں کے ہاتھ پکڑوا دیے گئے جنہوں نے مسیح یشو کو اس کال کا سب سے ادھک پیڑا دائک ایوم نندا جنک دنڈ دیا, ارتھات کروس مرتیو کا دنڈ. کروس پر لٹکے ہوئے مسیح یشو کا رکت بہتا رہا. ان کی مرتیو ہو گئی اور انہیں قبر میں گاڑا گیا. اور اپنے دادا کے انوسار وہ تیسرے دن جیوت ہو گئے. جیوت ہونے کے پشچات وہ 40 دنوں تک پرتھوی پر وچرن کرتے رہے اور انیک ویکتیوں نے انہیں دیکھا. اس طرح مانو دیہ دھارن کا اپنا ادیش پورن کرنے کے پشچات مسیح یشو واپس سورگ چلے گئے. پریہ بھائیوں, بہنوں اور بچوں, ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسیح یشو آج جیوت ہے. مسیح یشو آج آپ کو آپ کے پاپوں کے دنڈ سے بچانا چاہتے ہیں. آج آپ بھی مسیح یشو کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ آئیے اپنے پاپوں کو پہچانیے اور ان سے پشچاتاپ کیجیے. مسیح یشو کے سمکش آ کر اپنے پاپ سویکار کیجیے اور ان سے کہیے کہ آپ ان پاپوں کے کارن کتنے کھیدت ہیں, اور تب ان پاپوں کے لیے ان سے کھما یاچنا کیجیے. مسیح یشو آپ کی پرارتھنا سن کر آپ کو آپ کے سمست پاپوں سے شدھ کر دیں گے. اس طرح آپ پاپ کے لیے نیوکت پرمیشور کے دنڈ سے مکت ہو جائیں گے اور مرتیو کے پشچات آپ کی آتما ترنت ہی مسیح یشو کی اپستھتی میں سورگ پہنچ جائے گی. مسیح یشو کے یہ شبد سنیے. مسیح یشو نے کہا, مارگ میں ہوں. آئیے اسی سمے مسیح یشو کے پاس آ جائیے. नमस्कार, आपसे एक बार फिर मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन दिनों में उस परमेश्वर के विषय विचार करता रहा हूँ जिसके विषय आपने मुझे पिछली मुलाकात में बताया था। मैं इस परमेश्वर के विषय और अधिक जानने के लिए इच्छुक हूँ।
जरूर जरूर, परमेश्वर के विषय आपको और अधिक जानकारी देकर मुझे बेहद खुशी होगी। तो आइए यहाँ बैठे,
कृपया उन सारी बातों को और अधिक स्पष्ट कर दीजिए।
अच्छा, पिछली मुलाकात में मैंने आपसे उस परमेश्वर के विषय कुछ बातें की थी जो परमेश्वर हमारी सृष्टि के निर्माता है, यानी वो परमेश्वर जिन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी का निर्माण किया, वो परमेश्वर जिन्होंने प्रत्येक जीवित प्राणी को बनाया। ये वही परमेश्वर है जिन्होंने प्रथम पुरुष आदम एवं प्रथम नारी हव्वा का निर्माण भी किया। वे भी परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर के प्रति पूर्ण तरह आज्ञाकारी थे। इस परिस्थिति में वे बड़े सुख, संतोष और शांति में रहा करते थे। तब एक दिन शैतान हव्वा के पास आया, शैतान जो कि परमेश्वर का विरोधी है, शैतान जिसने परमेश्वर के प्रति विद्रोह संगठित किया था क्योंकि उसने परमेश्वर के तुल्य हो जाने की योजना बनाई थी। फलस्वरूप शैतान परमेश्वर के सम्मुख से दूर कर दिया गया और अब निरंतर परमेश्वर के हर कार्य का विरोध किया करता है। अपनी चतुराई पूर्वक की गई बातों के द्वारा शैतान ने हव्वा पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो कार्य करने के लिए तैयार हो गई जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, और इस तरह आदम और हव्वा ने वो कार्य किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। शैतान की बात मानने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। ये पाप था। उनके ऐसा करने के द्वारा पाप उनके हृदयों में, उनके जीवनों में समा गया और समस्त मानव जाति पर पाप का श्राप छा गया। धरती शापित हो गई। पाप का प्रभाव सभी मनुष्यों पर आ पड़ा। इससे परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ होगा, तब रो रहा होगा। हाँ, आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर ने इतना प्यार किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। फिर भी सच तो यह है कि परमेश्वर ने उनकी आज्ञा लंघन के बाद भी उनसे प्रेम करना न छोड़ा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी ही नहीं, न्यायी भी है। हर पाप का दंड वो अवश्य दिया करते हैं। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र परमेश्वर है। पाप का दंड आवश्यक है, न्याय संगत है। परमेश्वर विरोधी शैतान भी बिना दंड पाए नहीं रह सकता। एक निश्चित दिन उसका दंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर से विद्रोह और आदम और हव्वा से छल करने का दंड उसे अवश्य मिलेगा। अपने नियुक्त समय पर परमेश्वर से नर्क यानी आग की झील में फेंक देंगे। ये आग एक कभी न बुझने वाली आग है। इसी तरह परमेश्वर का ठहराया दंड उनकी भी प्रतीक्षा में है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी हैं, जो शैतान के अनुयायी हैं। वे सभी शैतान के साथ उस कभी न बुझने वाली आग की झील में झोंक दिए जाएंगे, जहां सदा सर्वदा के लिए रोना और तड़पना होता रहेगा। तो क्या हम सभी दंड पाने के लिए ठहरा दिए गए हैं? क्या हम सभी उस नरक कुंड में फेंके जाएंगे? सब नहीं, सब नरक में नहीं डाले जाएंगे। परमेश्वर के द्वारा मानव को दी गई धर्म पुस्तक बाइबल हमारा सुंदर मार्गदर्शन करती है। बाइबल बतलाती है कि अपने महाप्रेम के कारण परमेश्वर ने इस पापी संसार को पाप के दंड एवं प्रभाव से मुक्त करने के लिए अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु को बलिदान स्वरूप दे दिया। अब जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए मसीह यीशु पर विश्वास करता है, यानी अपने मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के प्रबंध को स्वीकार करता है, वो आग की झील अर्थात नरक के दंड से बच जाता है और फलस्वरूप एक ऐसे जीवन का अधिकारी हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। मसीह यीशु पृथ्वी पर आए ही इसलिए थे कि वो हमारे स्थान पर परमेश्वर से मिलने वाला दंड स्वयं अपने ऊपर ले ले, जिससे पापी मानव नरक में जाने से बच जाए। मसीह यीशु ने अपना समस्त जीवन हमारे उद्धार के लिए दे दिया।
यानी मसीह यीशु क्रूस पर मेरे लिए मर गए?
जी हाँ, मसीह यीशु की क्रूस मृत्यु आपके लिए भी थी, मेरे लिए भी, और समस्त मानव जाति के लिए भी। जैसा मैंने अभी कहा कि मुझे और आपको पापों के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर की महान योजना ने मसीह यीशु ने क्रूस पर मर जाना स्वीकार किया, लेकिन वो आज जीवित हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात वो कब्र में पड़े नहीं रह गए, बल्कि अपने दावे के अनुसार तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए। फिर वो अपनी योजना के अनुरूप स्वर्ग पर चले गए। सुनिए, ये सब सुनने के पश्चात इतना जान लेने पर कितना अच्छा हो कि आप जीवित मसीह यीशु से यूं कहें, प्रिय प्रभु मसीह यीशु, आज मैंने ये जान लिया है कि आपकी दृष्टि में मैं पापी ही हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से पाप किए हैं। अपने पापों के लिए मैं अत्यंत दुखी हूं। अपने पापों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, कि मृत्यु के पश्चात मैं आपके निवास स्वर्ग में पहुंच सकूं। क्या आप आज इसी समय मसीह यीशु को अपना उद्धारक बनाकर प्रेरणा करेंगे?
क्यों नहीं, मैंने मसीह यीशु को अपनाने का निश्चय कर लिया है। सत्य को मुझ पर प्रकट करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
Thank you.
प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पीढ़ियों से हम अपने पूर्वजों की धार्मिक रीतियों और परंपराओं पर चलते रहे हैं। हमको ये सिखाया गया कि हम मंदिरों में जाकर पूजा करें, वहाँ देवी या देवताओं को भेंट चढ़ाएं और अपने पापों से मुक्ति के लिए तीर्थ यात्राओं पर जाएं। और भी अनेक बातें हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं। आप स्वयं उन बातों की एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। जरा विचार कीजिए, अच्छी तरह सोचिए, क्या वास्तव में ये सब करने से आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? जरा सोचिए। और अब मेरी बात सुनिए, आपको आपके पापों से मुक्ति केवल सच्चे एवं जीवित परमेश्वर ही से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किया गया हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध हुआ करता है। परमेश्वर ही स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के सत्य को बदल कर रख दिया। उन्होंने पशुओं, पक्षियों और अपनी कल्पना से तैयार की वस्तुओं की मूर्तियां बनाई और उनकी उपासना की। जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपेक्षा कर वे अपनी बनाई हुई इन मूर्तियों की भक्ति करने लगे। ये देखकर परमेश्वर ने ही उन्हें उनके बुरे मार्ग पर चलने के लिए छोड़ दिया। ये बुरा पद है, अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, ईर्ष्या, हत्या, झगड़ा, धोखा, दैर, रिश्वत लेना और देना इत्यादि। उनके सिखाने में आकर हम भूल गए कि यह पद परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए सच्चे जीवित और न्यायी परमेश्वर की उनके लिए यह घोषणा है कि वो ऐसे करने वाले, ऐसे कार्य करने वाले सभी मनुष्यों का न्याय अवश्य करेंगे। एक भी व्यक्ति, जी हाँ, एक भी व्यक्ति परमेश्वर के इस न्याय से बच नहीं सकेगा। यदि हम अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप कर अपना पथ न बदलें, तो परमेश्वर का दंड हमारे लिए सुनिश्चित है। आप जानना चाहेंगे इस न्याय से कैसे बचा जा सकता है। सुनिए, आपके लिए यह एक शुभ संदेश है। हमारे सच्चे एवं जीवित परमेश्वर न केवल न्यायी परमेश्वर है, बल्कि प्रेम, कृपा और धीरज के भी परमेश्वर है। सब मनुष्यों के लिए अपने प्रेम के कारण वो नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य को दंड दे। अपने ही प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु को पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेज दिया। मसीह यीशु ने मानव बन इस पृथ्वी पर पापहीन जीवन व्यतीत किया। मसीह यीशु उत्तम शिक्षक थे। उन्होंने पापों के लिए मनुष्यों को डांटा और उन्हें सारे कुकर्म छोड़ने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे लिए निश्चित मृत्यु दंड से छुड़ा लूं। इसके लिए आवश्यक है कि मेरा प्राण, मेरा जीवन तुम्हारे लिए उंडेल दिया जाए। यही एक मार्ग है तुम्हें तुम्हारे दंड से छुटकारा दिलाने का। यदि तुम मेरी इन बातों का विश्वास करो और मेरे वचनों का पालन करो, तो तुम इस दंड से निसंदेह बच जाओगे। अपनी इस घोषणा के अनुसार मसीह यीशु क्रूस पर मार डाले गए और कब्र में दफना दिए गए, लेकिन वो कब्र में पड़े नहीं रह गए। अपनी घोषणा के अनुसार वो तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए। अनेक व्यक्तियों ने मसीह यीशु को जीवित देखा, कुछ ने उन्हें छूकर देखा, कुछ ने उनके साथ भोजन किया, अनेकों ने उनसे बातें की। 40 दिन व्यतीत होने पर मसीह यीशु अनेकों के देखते देखते स्वर्ग पर वापस चले गए। आज भी जीवित मसीह यीशु आपको अपने पास बुला रहे हैं। यदि आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके उनके पास आएंगे, तो वो आपको ग्रहण करेंगे। स्मरण रखिए, मसीह यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आइए आज ही अपने बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर की ओर लौट आइए। इस तथ्य पर विश्वास कीजिए कि मसीह यीशु आपके लिए मनुष्य बने, क्रूस पर मार डाले गए कि आपके पापों की क्षमा के लिए उनका रक्त बहे और आपको शुद्धता प्राप्त हो जाए, और वो आपको धर्मी घोषित करने के लिए जीवित भी हो गए। अब आवश्यक नहीं कि आप परमेश्वर के दंड का सामना करें। दंड से बचने का यही एक रास्ता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य इस दंड से बचना चाहेंगे। आप जानते हैं कि सच्चे जीवित परमेश्वर के पास पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के लिए स्थान है। पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न होने के पूर्व परमेश्वर का अस्तित्व था। इसलिए हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का न तो कोई आरंभ है न कोई अंत। हमारे परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको सृजा है और वो हमारे विषय सब कुछ जानते हैं। हमारी प्रत्येक गतिविधि सदैव उनकी दृष्टि में बनी रहती है। हमारा जन्म का दिन और हमारी मृत्यु का दिन उनकी दृष्टि में है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अंतर्यामी है। परमेश्वर पवित्र, प्रेमी और सच्चे हैं। पाप से उन्हें घृणा है। पाप के कारण मानव पर दुख, रोग और संकट आ पड़े हैं। लेकिन चूंकि हमारे परमेश्वर प्रेम में परमेश्वर हैं, उन्होंने हमको पाप के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए एक योजना बनाई। परमेश्वर ने ये कभी नहीं चाहा कि एक भी मनुष्य पाप के कारण नाश हो जाए। परमेश्वर की इस योजना की पूर्ति मसीह यीशु के मानव बन पृथ्वी पर आने के द्वारा हो गई। परमेश्वर की महासामर्थ से परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु मनुष्य बन गए। इसी महान योजना के अंतर्गत पवित्र आत्मा की सामर्थ से मरियम नामक एक कुंवारी से उनका जन्म हुआ, इसीलिए वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। मानवन पृथ्वी पर रहते हुए मसीह यीशु ने अपनी दिव्य सामर्थ्य के प्रभाव से अनेक आश्चर्य कर्म एवं चमत्कारों के द्वारा अपना ईश्वरत्व प्रमाणित एवं स्थापित किया, जिससे अनेकों ने उन पर विश्वास किया और उनके अनुचर बन गए। दूसरी ओर अनेक धर्म अध्यक्ष एवं नेता उनकी प्रभावशाली व्यवहारिक शिक्षाओं के कारण उनके प्रति ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने मसीह यीशु के एक मित्र को अपने पक्ष में कर लिया और उसने मसीह यीशु को छल पूर्वक इन शत्रुओं के हाथ समर्पित कर दिया। इन धर्म नेताओं ने झूठे आरोप लगा लगाकर मसीह यीशु को मृत्यु दंड के योग्य बताया और उन पर दंड की आज्ञा प्रसारित कर दी। उस समय की सबसे क्रूर एवं पीड़ादायक मृत्यु उनके लिए ठहराई गई, अर्थात क्रूर मृत्यु। उनके हाथों एवं पांव में कीड़े ठोक कर उन्हें क्रूर से लटका दिया गया। जब मसीह यीशु ये यातनाएं सह रहे थे, तब क्रूर ही से उन्होंने अपने इन शत्रुओं के लिए परमेश्वर से उनके पाप क्षमा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मसीह यीशु के समक्ष परमेश्वर की उद्धार योजना पूर्णतः स्पष्ट थी कि उन्हें सब मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान स्वरूप मरना आवश्यक है। एक ऐसा बलिदान जो कि परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक मेमने के तुल्य है। स्मरण रखिए, मसीह यीशु ही एकमात्र मानव थे जो पूर्णतः निष्पाप थे। इसीलिए केवल वही परमेश्वर द्वारा बलिदान स्वरूप स्वीकार किए जा सकते थे। परमेश्वर की यह योजना अत्यंत मूल्यवान थी। इसके सिवा अन्य कोई योजना परमेश्वर को स्वीकार भी नहीं हो सकती थी। क्रूस पर अपना निर्दोष रक्त बहाते हुए मसीह यीशु आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे स्थान पर यह दंड उठाते हुए मर गए। वो कब्र में रखे गए, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर की महासामर्थ में पुनः जीवित हो गए। अब उनका अगला कार्यक्रम था वापस स्वर्ग लौट जाना। इसके पूर्व कि वो अपना सारा कार्य पूर्ण कर स्वर्ग लौट जाएं, उन्होंने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा। उसका अर्थात पवित्र आत्मा का निवास तुम्हारे हृदय में होगा और तुम्हें निवास करते हुए वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। न केवल ये, बल्कि वो तुम्हें परमेश्वर से संबंधित सारी बातें सिखाएगा। वो परमेश्वर की आज्ञाएं मानने एवं उन पर अमल करने में तुम्हारी सहायता करेगा। वो तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम मसीही जीवन में दृढ़ एवं परिपक्व बनो और पाप से बचते रहो। यह आश्वासन के शब्द कहते हुए मसीह यीशु के देखते देखते बादलों में होते हुए स्वर्ग वापस चले गए। इस घटना के 10 दिन पश्चात शिष्य एक कमरे में एकत्र थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें प्रचंड आंधी जैसा शोर सुनाई दिया। ये वास्तव में उन पर आता हुआ पवित्र आत्मा था जो कि आकर उस कमरे में एकत्र 120 व्यक्तियों में समा गया और उनमें निवास करने लगा। ये परमेश्वर की अभिलाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग प्रवेश का सुअवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए परमेश्वर की अभिलाषा है कि प्रत्येक राष्ट्र, जाति एवं भाषा में प्रत्येक मनुष्य इस शुद्ध संदेश को सुने। यही कारण है कि हम आप तक इस शुभ संदेश को लेकर आए हैं। प्रिय मित्र, आप अनंत जीवन और उस समाप्त न होने वाले सुख को कोई भी मूल्य देकर खरीद नहीं सकते, न आप किसी भी परिश्रम या पुण्य कार्य के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप मात्र अपने प्रयासों से स्वयं को इस योग्य नहीं बना सकते कि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। अनंत जीवन आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। यह उपहार आप परमेश्वर से इसी समय प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिए, मसीह यीशु ने आपके लिए आपके स्थान पर अपने प्राण दे दिए। इसकी आवश्यक है कि आप उन पर विश्वास करें और उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में जीवन में आमंत्रित करें। ऐसा करने के द्वारा आपको अपने पापों से क्षमा प्राप्त हो जाएगी और पवित्र आत्मा आकर आपके हृदय में निवास करने लगेगा और आपके जीवन की समाप्ति पर आप तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इस तरह परमेश्वर की यह महान योजना आपके जीवन में भी पूर्ण हो जाएगी।
दिल अपनी हबीबत को बताता कभी कभी, दिल अपनी हबीबत
प्रिय मित्र, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने जीवित और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का उन्हें अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने का निश्चय कर लिया है। इस विषय में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
जी हाँ जरूर, मेरी बड़ी इच्छा है कि इस विषय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकूं।
अच्छा सुनिए, जब भी कोई व्यक्ति मसीह यीशु को अपना उद्धारक बनाकर जीवन में आमंत्रित करता है, अनेक अनेक सुंदर बातें उसके जीवन में घटने लगती है। दूसरे शब्दों में उसके जीवन में आशीषों की वर्षा होने लगती है। उसी क्षण सर्वप्रथम उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उसके हृदय में आकर निवास करने लगता है। ये सहायक आत्मा जो कि उसे परमेश्वर की दृष्टि में सही कार्य करने के लिए प्रेरित एवं संचालित करता है, मसीह यीशु को अपनाने के कारण वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य। उसे निरंतर परमेश्वर की सहायता, सुरक्षा और आशीषें प्राप्त होने लगती हैं।
यानी हमारे लिए आवश्यक है कि हम सदैव परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें, हर बात में उनका आज्ञा पालन करें और यह करने के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें।
जी हाँ, परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम हमारे लिए मसीह यीशु देकर प्रकट किया है। हमारे और समस्त मनुष्यों के पापों का दंड के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु दे दिया। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के प्रेम का विश्वास करें। परमेश्वर के प्रति विद्रोही होने की स्थिति में भी हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। इसलिए अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद ही करते रहें। अक्सर हमारे जीवन में जो कठिनाइयां, विपत्तियां या समस्याएं आई करती हैं, वे परमेश्वर की अनुमति ही से आया करती हैं। तब उन परिस्थितियों में हम ये ना सोच बैठे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया है। इन कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर हमको अपने और अधिक निकट लाने का प्रयास किया करते हैं। परमेश्वर की महाशक्ति का परिचय हमको मसीह यीशु के मृतकों में से पुनर्जीवित होने के द्वारा मिलता है। इसी महासामर्थ्य से परमेश्वर हमारी सहायता करते रहते हैं। उनके समस्त प्रयास हमको एक परिपक्व या सशक्त मसीही बनाने की दिशा में हुआ करते हैं।
अच्छा, ये समझाइए, यदि एक मसीही कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो क्या उसके प्रति परमेश्वर का प्रेम समाप्त हो जाएगा?
जी नहीं, परमेश्वर इस परिस्थिति में भी उससे प्रेम करते रहते हैं। निसंदेह परमेश्वर का हृदय इसके द्वारा अत्यंत दुखी हो जाया करता है। इस परिस्थिति को सुधारने का एक तरीका है, जैसे एक बालक खेलते हुए गंदा हो ही जाता है और उसे पुनः साफ करना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह जिस क्षण आपको ये बोध हो कि आपने पाप किया है, आपका ये कर्तव्य हो जाता है, आप उसे परमेश्वर के समक्ष स्वीकार करें। आप परमेश्वर से उस पाप के विषय यूं कहें, हे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मुझसे ये पाप हो गया है, अपने इस कार्य के लिए मैं शर्मिंदा हूं, सचमुच मैंने यह गलत किया है, मसीह यीशु के नाम में आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी ऐसी सहायता कीजिए कि मैं फिर कभी ये पाप ना दोहराऊं। परमेश्वर तब आपके पाप को मसीह यीशु में क्षमा कर देंगे और आपकी सहायता करेंगे कि आप उस पाप को फिर ना करें। यह बाइबल में लिखी हुई एक प्रतिज्ञा है। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो अर्थात परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
अच्छा, अब मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा और वो ये है, यदि कोई मेरा बुरा करे तो उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और तब उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है?
परमेश्वर को जानने और मसीह यीशु को अपनाने के पूर्व परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरे काम यानी पाप ही किया करते थे। हम परमेश्वर के मित्र नहीं थे, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते रहे। इसलिए परमेश्वर के इस नियम के अनुसार हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम भी उस व्यक्ति को क्षमा करें, उससे प्रेम करें जिसने हमारे प्रति बुरा किया है। हमारे लिए ऐसा करना तभी संभव होता है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में निवास करता हो। इस परिस्थिति में हम उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, यथासंभव उसकी सहायता करें और सुअवसर मिलते ही उसे मसीह यीशु और परमेश्वर के प्रेम के विषय बताएं।
अच्छा ये बताइए, परमेश्वर से प्रार्थना मैं कब करूं और कैसे करूं?
किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु के लिए, दिन में या रात में हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करना ही तो है। अपनी इन आंखों से हम परमेश्वर को भले ही देख न सकें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहती है। सत्य यह है कि यह परमेश्वर ही की अभिलाषा है कि हम निरंतर उनसे प्रार्थना में वार्तालाप करते रहें। अपनी प्रार्थना में हम परमेश्वर को उनके पुत्र हमारे प्रभु मसीह यीशु के लिए धन्यवाद दें और फिर उन्हें उद्धार की योजना और अपने पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद दें। अपनी सुरक्षा और उनके द्वारा की गई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें धन्यवाद दें। और यदि हमारे समक्ष कोई समस्या है, कोई संकट है, कोई आवश्यकता है, तो अभी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रख दें। यदि हम पर शोक का समय आ पड़ा है तो हम परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारी हर कठिनाई में परमेश्वर सहायक है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं।
बड़ी शांति मिली इन बातों को सुनकर। अब मैं प्रार्थना भी कर सकूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लूं। आप क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी रोचक पुस्तक है यह। इसमें हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का संदेश दिया हुआ है। बहुत सारी पुस्तकें देखी एवं पढ़ी है मैंने, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में अनोखी है, सर्वश्रेष्ठ है। इस पुस्तक का नाम है बाइबल। यानी आप मसीह हो गए? जी हाँ, अब मैं एक मसीह हूँ। तो आपने अब मंदिरों में जाना और पूजा पाठ इत्यादि सब छोड़ दिया होगा?
हाँ,
क्योंकि परमेश्वर की यह पुस्तक बाइबल का आदेश है। जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, किसी अन्य की उपासना भक्ति न करना।
मुझे ये बताइए, आप मसीह बन कैसे गए? जरूर आपको इन लोगों ने अच्छी खासी रकम दी होगी, या फिर किसी और बात का लोभ दिया होगा?
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसीह लोग किसी को मसीह बनाने के लिए कभी पैसा इत्यादि नहीं देते। मसीहत को धर्म नहीं बल्कि एक विश्वास है। ये सच्चे एवं जीवित परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह हृदय की गहराइयों में पापों की क्षमा एवं अनंत शांति का एक अनोखा अनुभव है।
आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं। ऐसा कीजिए, ये सब जरा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए।
बड़ी खुशी से। आप तो जानते ही हैं कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करता था, फिर भी मुझे सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो पाता था। मैं एक अच्छा और नैतिक व्यक्ति बनने का प्रयास करता रहता था, लेकिन अपनी अंतरात्मा को टटोलने से मैंने ये पाया कि मैं इसमें हमेशा विफल ही होता चला जा रहा हूँ। आवश्यकताओं के उन अवसरों पर उन देवताओं से जिनकी मैं आराधना किया करता था कोई सहायता प्राप्त ना हो सकी। एक दिन एक पति मित्र से बातें करते हुए मुझे ये ज्ञात हुआ कि सच्ची शांति की प्राप्ति केवल जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से ही हो सकती है। परमेश्वर जो कि सर्वोच्च है, महापवित्र है, शांति की प्राप्ति हमारे द्वारा किए गए कामों से, पुण्य कार्यों से, बलिदान चढ़ाने से या तीर्थ यात्रा पर जाने से नहीं होती। हृदय की गहराइयों में मैंने अपने आप के लिए पापों की क्षमा का अनुभव किया।
क्या? पापों की क्षमा? हाँ, ये सच है। मैं स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। कोई बुरा कार्य नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, अनेक पुण्य कार्य भी किया करता हूँ। फिर भी आज आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे हृदय में वास्तविक और स्थायी शांति नहीं है, और इस शांति की तलाश मुझे भी है। शायद आप मुझे बता सकेंगे कि ये शांति मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
मेरे मित्र, एक बात सदा याद रखना, बाइबल बतलाती है कि हमारे सारे धर्म के काम
महापवित्र परमेश्वर की दृष्टि में गंदे मैंने घृणास्पद से छोड़ के कराए हैं। वाणी के द्वारा हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धनी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी है, भले ही वो ये माने बैठा हुआ है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया है। हमको धनी बनाने के उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने महाप्रेम के कारण एक योजना बनाई। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु को मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया कि वो हम सबके पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान बन जाए। मसीह यीशु क्रूस पर मार डाले गए यानी बलिदान हो गए, लेकिन वो जिनसे समस्त सृष्टि ने जीवन पाया है मृत कैसे रह सकते थे? अपने दावे के अनुसार वो तीसरे दिन पुनः जीवित हो प्रकट हुए और सशरीर स्वर्ग पर चले गए। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु आपके पापों के कारण क्रूस पर मारे गए और आप अपने समस्त पापों के लिए पश्चाताप करें और उनकी ओर कभी न मुड़ें, तो मसीह यीशु में आपके पाप क्षमा होंगे और पवित्र आत्मा के रूप में मसीह यीशु आपके हृदय में आकर निवास करने लगेंगे। तब आप जीवन में एक अनोखी अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे। अब मैं समझ गया कि आप मसीह क्यों बन गए हैं। मेरे लिए तो ये सभी कुछ नया है। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं भी आज मसीह हो जाऊं तो देवता मुझसे अवश्य क्रोधित होंगे और मुझे किसी न किसी रूप में दंड अवश्य देंगे ना? इसके लिए बाइबल में लिखा है, ये आश्वासन सुनिए, लिखा है परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। मेरे मित्र, ये सारी बातें बताने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आपकी बातों ने मेरा हृदय चूर लिया है, मैंने मसीह होने का निश्चय कर लिया है।